اپنی کامیابی کے راستے کو سامنے رکھے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. خود کو کامیاب کروانے کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے، میری ٹرین چھوٹ گئی. کتنے لوگ ہیں جو یہ جملہ اکثر بولتے ہیں؟ یا آپ اپنے آپ سے پوچھئے، مجھے کتنی دفعہ یہ جملہ بولنا پڑا، اوخو پلین مس ہو گیا، ٹرین چھوٹ گئی، بس ہاتھ سے چلی گئی، ابھی سامنے ہی تھی تو بس چلی گئی. کئی دفعہ کامیابی بالکل ہمارے قریب ہوتے ہیں نا، کامیابی بالکل ہمارے قریب ہوتی ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی غفلت، کیئرلیسنیس اور اس چیز کو فار گرانٹیڈ لینا، اس کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا، ہر کسی کے لیے کامیابی اپنے بازو نہیں کھول سکتی، ہر کسی کے لیے خوابوں کو زندگی دینا ممکن نہیں. یعنی بعض لوگ اس طرح سے نیگیٹولی سوچتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ سب کامیاب ہوں، تو پھر میں بھی انہیں ایک میں سے ایک ہوں کہ جو کامیاب نہیں ہوں گے. میں ایک منٹ بھی نہیں لگاتا ان سے متفق ہونے میں. وہ صحیح ہی تو کہتے ہیں، ہر کوئی بھلا کہاں کامیاب ہو سکتا ہے، ہر کوئی سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ہاں مگر سر اٹھا کے جینا تو صرف ان خاص لوگوں کا کام ہے جو کچھ کر دکھانے والے ہوتے ہیں. خود سے پوچھئے، کیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں؟ سر اٹھا کے جینے والے لوگ آج میں جو کچھ کرتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا. یہ بھی لکھئے، جن لوگوں نے آج کام کیا ہے وہ کل ضرور سر اٹھا کے جیئیں گے. یعنی جب آپ اپنے آج کی قدر پہچانیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنے لیے کامیابی کے راستے خود بخود کھولیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہیں کل میں وہ کچھ ملتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. کیا پتا چلا؟ کہ جو اپنے آج کی قدر کر لیں گے وہ کل ضرور وہ پا لیں گے جو دوسروں کو نہیں ملے گا. سر اٹھا کے جینے والے لوگ میری آپ کی طرح کے گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے سر اٹھا کے جینے کا راز پا لیا ہوتا ہے. راز کیا ہے؟ راز بڑا ہی سادہ ہے. آپ خود سے سوچئے، یہ کوئی سیکرٹ ہے؟ ٹاپ سیکرٹ، کسی کو نہ بتانا، کوئی نہ پوچھے، میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گی. نہیں، کامیاب ہونے کا راز تین چیزوں میں چھپا ہوا ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا مجھے پتا ہے؟ نہیں پتا تو لکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد بس اس راز کو کھول کر اپنی زندگی میں کامیابیوں کا فیصلہ کیجئے. نمبر ایک، پہلا راز، طے کرنا کہ زندگی سے مجھے کیا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک آج بیٹھ کے یہاں سوچے، تین منٹ نہیں، تین منٹ تو نہیں دے سکتی، پانچ سیکنڈ تک ٹائم لے، لکھے، اب جو میری زندگی ہے، جو میری عمر ہے اس وقت، اس سے لے کرنے تک مجھے کیا کرنا ہے. لکھے جو بھی دل کی بات ہے، چھپ جو بننا چاہتے ہیں، جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، لکھ لیں. کسی کو آئیڈیل کیا ہوا ہے کہ ہائے فلاں کتنا خوش قسمت ہے، وہی لکھ لیں. ٹھیک ہے، لکھنا پڑے گا. پھر دوسری چیز، تعین کرنا کہ اس چاہت کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. یعنی پہلی چیز کیا کرنا ہے، دوسری چیز قیمت کیا دینی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چاہتوں کی قیمت نہ ہو. آج دیکھیں دنیا میں جب لوگ گھومنے جاتے ہیں اور شاپنگ بیگز بھر بھر کے لاتے ہیں، تو وہ اپنی چاہتوں ہی کی تو قیمت دیتے ہیں ٹل پہ کھڑے ہو کر. کیش رجسٹر میں چیزوں کی قیمت نہیں جاری ہوتی، ان کی چاہتوں کی جاتی ہے. کوئی چیز فری نہیں ہے اس دنیا میں، تو کامیابی کیسے فری ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو سب پتہ چل گیا کہ قیمت تو ہوگی، دینی پڑے گی. تیسرا سوال یہ ہے کہ قیمت پھر چکا بھی دیں. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے قیمت دینی ہے، لیکن چکا نہیں پاتے، اور قیمت چکانی اور وہ بھی ایڈوانس میں. کامیابی خریدنے کے لیے بعد میں نہیں، پہلے قیمت دینی پڑتی ہے. دنیا میں شاپنگ کے آج بہت مختلف انداز ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پے بائے ناؤ پے لیٹر، बाज कहते हैं 3 माह तक फ्री है, बाद में ये वो दिस एंड दैट, लेकिन कामयाबी के लिए कीमत पहले देनी पड़ती है, पूरी देनी पड़ती है। जितना बड़ा मकसद है आपकी ज़िंदगी का, उतना बड़ा आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब राज तो खुल गया आपके ऊपर, तो फिर ये राज जान लेने के बाद भी लोग सर उठा के जीने में नाकाम क्यों हो जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। ये बातें को पहली दफ़ा थोड़ी हम कर रहे हैं, बीसियों बार कही सुनी, तो क्या वजह है कि हम अपना हदफ हासिल नहीं कर पाते? कई बार खुद से इरादे किए टूट गए, ख्वाब देखे चिकना चूर हो गए, वजह क्या है? सीधी सी बात है, लोगों की बड़ी तादाद सारी जिंदगी ये तय ही नहीं कर पाती कि इन्हें चाहिए क्या, जिंदगी से उनकी क्या आरजुएं वाबस्ता हैं। यानी पहली सीढ़ी से स्लिप। आप लोगों से पूछे, इतने मुतमईन, इतने मसरूर अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं, बड़े खुश हैं जी, सब कुछ किया है, नमाजें पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं। मैं वो टोन नहीं इस्तेमाल करना चाहती जो इस वक्त मेरे जहन में है। मैं किसी से पूछ रही थी, ऐसी बात हुई, सुनाएं क्या, शुक्र है जी सब ठीक चल रहा, बहुत अच्छा काम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पंसूरा पढ़ती हूँ। तो मैं उनका मुंह देख रही थी, मैंने कहा मुझे भी अल्लाह कभी इतना यकीन दे देना कि वाकई जो तुमने कर लिया ये काफ़ी है, अब तुम्हें और कुछ नहीं ज़रूरत। तो कुछ लोगों को पता ही कोई नहीं कि करना क्या है, अगर वो तय कर भी लें तो कभी दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि जिंदगी को पाने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, सुबह जल्दी उठना भी तो कीमत चुकाना है ना, गर्मी सर्दी का मुकाबला करना भी कीमत चुकाना है, ज़ाती ज़िंदगी के तकाज़ों को पीछे डालकर इज्तमाई ज़रूरियात को निभाना, ये भी तो कीमत है ना। हर कीमत जो होती है ना, रुपए पैसे में नहीं मिलती। दुनिया में आप देखते हैं शॉपिंग के बहाने कहते हैं मनी दे दें, कैश भी ले लेंगे, क्रेडिट भी ले लेंगे, पेपॉल से भी ले लेंगे, है तो पीछे सब में मनी ना, लेकिन कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि मान लगे। जज्बे, स्टेटस, सुस्ती, प्लान्स, तफरीहात, ख्वाहिशात, दिल दिमाग कुछ और, घर के काम, हर एक अपना गोल सोचे। कितना छोटा गोल लगता है ना कि मैंने आज अपना घर साफ करना है और उसके बाद मैंने खुश होना है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम। ठीक है, एक औरत आम होगी तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा गोल है, लेकिन कल शाम तक घर फिर गंदा हो जाएगा, हो सकता है आज शाम तक ही हो जाए, लेकिन दिल गंदा हो या रूह गंदी हो या इंसान उस वक्त में कुछ और उससे बड़ा काम कर सके और सिर्फ उस काम के लिए पीछे होना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी को कोई तोप दे कि जाओ इसे दुश्मन मारो और वो उससे मच्छर कम करे। आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से सिर्फ मच्छर मारने का काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से मच्छर मारने का काम ले रहे हैं, हालांकि वो बड़े बड़े दुश्मनों को मार सकते हैं। आप सब ऐसे ही बैठे हुए ना, जैसे 1 हफ्ता 10 दिन पहले थे। जब भी मैं ट्रैवलिंग के बाद आती हूँ ना, तो मेरे जहन में बहुत हलचल होती है, एक्साइटमेंट कह लें या नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ वो ज़रूरत। और मैं हर दिन ये कहती हूँ, ज़रूरत कितनी है, हर स्टेशन पे जाकर यही ख्वाहिश, यही तमन्ना, यही रिक्वेस्ट, हमें इधर ज़रूरत है, इधर कुछ करें, कोई काम शुरू हो जाए, कोई कर ले कुछ भी। यानी इतनी ज़रूरत है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को मेरी, और मैं अपने घर के आराम को देखूं, खाना आज क्या पकेगा, आज क्या पहनूंगी, रात शादी में जाना है, इतने छोटे ये बात लगती, इतनी छोटी ये बातें लगती हैं कि अगर कोई बेचारा जेन्युइन भी बात करे तो हंसी आती है कि ये क्या कर दी। तो क्या पता चला, कामयाबी के लिए शर्त के पहले अपना गोल बनाए, पहुँचना कहें, फिर उसकी कीमत दें, दुरुस्त अंदाजा लगाएं, जिंदगी को पाने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या सीखना पड़ेगा, क्या सहना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, क्या खोना पड़ेगा, कौन सी सलाहियतें, कौन सी महारतें और कौन सी अहलियतें खुद में पैदा करनी होंगी, ये आपको मुझे देखना पड़ेगा। कोई नहीं आती, एक स्केल तो लेनी पड़ेगी, तभी तो मैं कामयाब होंगी, शायद वही मेरे रास्ते की रुकावट है। कौन सी सोचें, कौन से ख्यालात, कौन से सवालात, कौन से रवैये, कौन से जज्बे, कौन से तर्ज़े अमल के ज़ाविये इख्तियार करने होंगे। यह आखिरी बात भी बहुत अहम है। बाज़ दफ़ा हम तय कर लेते हैं कि हमने कामयाब होना है, हमने इंसानियत के अंधेरे दूर करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किया ये तय, कीमत देनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, पढ़ेंगे, याद करेंगे, फिर ट्रेनिंग लेंगे, वो भी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट बनती है ना, वो हमारी सोचें। ये जो हमारा ट्रिप था, ख़ासतौर पे फ्रांस से शुरू हुआ था, जब पहले नहीं, फ्रांस से लेकर बर्लिन, ये दो आखिरी जो कंट्रीज़ थे, आप लोग भी इसके जब कभी सुनेंगे तो हमने इसमें एक सीरीज रिकवर की है, बातनी बीमारियाँ और उनकी असलाह, तकबर, गुस्सा, इसी तरह से रियाकारी, और इसी तरह से एक टॉपिक था हमारा बुखल, फिर इसी तरह, यानी 6-7 टॉपिक किए हैं। और हर टॉपिक के बाद जो मैंने लोगों को देखा, यह एक कीना था, सुभानअल्लाह, जहाँ भी वो मैंने किया, मैंने जो उसके बाद अपने सामने आके दोस्तों को रोते देखा, फूट फूट के कई सिस्टर्स आके रोई कि हमने तो इतना कुछ पाला हुआ। कीना क्या होता है? ऐसे किसी से बैर रख लेना। और वो कौन सा दिल है जो आज कीनों से खाली नहीं है? भाई बहन से रिश्ता नहीं लिया, कीना, देवरानी जिठानी से कीना, उसने मेरी हांडी में जो चमचा बोक्स कर दिया, यानी हर बंदा ऐसे लगता है कि अपने बोझ उठा के बैठा हुआ। ऐसे खूबसूरत वो टॉपिक चला है ना, हर जगह जहां किया अमेजिंग रिस्पॉन्स, और जिधर के वो कहते हैं आपको किसने बताया, हमें तो अपनी कम्युनिटी में इसी की जरूरत है। काम करने वालों में कीना, कराने वालों में कीना, सदों वालों से कीने बोगस, अल्लाह के बंदो ये दिल है या ट्रैश कैन? सारे शहर का गंद तुमने अपने दिल में ही डालना, निकाल के फेंको, फिर तुम देखो कि मैं कितनी खैर देता। तो बस हमारी, आप इसको एक लफ्ज में नेगेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। कुछ लोगों की चॉइस इतनी गंदी होती है कि उन्होंने अपने अमाल नामे में गीबत, चुगली, बोहतान ही फेंकना होता है। वो गंद बला पकड़ के सारे शहर का कहते हैं आओ मेरे से, घंटों बर्बाद कर देते हैं अपने सिर्फ इस नेगेटिव सोच की वजह से कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो सोच बदलनी पड़ेगी मुझे और आपको। और अगर इन्हें ये सब भी पता चल जाए तो इस भारी की भारी भरकम कीमत का सुनकर वैसे ही बहुत सों के होश उड़ जाते हैं। वो तो पहले स्टेप पे कहते हैं सॉरी, नो नो नो, वी कैन डू दिस, इट्स इम्पॉसिबल। कीमत को चुकाने का ख्याल ही लोगों को हिला के रख देता है। ऊपर से जब ये पता चलता है कि कीमत है भी एडवांस में अदा करने की, तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। लोग कहते नहीं बाद में पे करेंगे, पे लेटर, फिर छोड़ दो अब नहीं हमने करना। लोगों को पे करना बहुत मुश्किल लगता है, अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर सकते वो और क्या करेंगे। लेकिन जब ये पता चले कि पूरे कोर्स की फीस पहले पे कर दो, कौन से कोर्स की, कामयाब होने के, तो लोग कहते नहीं हमसे नहीं होता। लोग सर उठा के जीने की अपने आराम सुकून पर कुर्बान कर देते हैं और कहते हैं यार कौन इतनी जहमत उठाए, बस यही ठीक है, ज़्यादा पैसे कमा के हमने क्या करना है। दौलत की हवस अच्छी चीज़ नहीं होती, अमीर होके कहीं ईमान से हाथ ना धो बैठे, हम जैसों के लिए यही ज़िंदगी बेहतर है। अब देखिए ये मिसाल है ना एक दुनियादार सोच के साथ, लेकिन मैं इसको आपके जैसों के लिए पढ़ती हूँ कि लोग सर उठा के जीने की आरजू को अपने आराम सुकून पर कुर्बान करते हैं, यानी आराम नहीं छोड़ते, वो नहीं कुर्बान करना, सुकून नहीं जिंदगी का, रूटीन ना टूटे, चलो छोड़ो कामयाबी छोड़ो, और क्या कहते हैं अरे दोस्त छोड़ो बस इतना काफ़ी है, नमाज रोज़ा तो करते हैं ना, शिर्क का पता चल गया है, बिद्दतें छूट गई हैं, और कोई ज़रूरी है हम जन्नत फिर दौस लें, कोई बात नहीं हम जन्नत के शुरू के दर्जों में बैठ जाएंगे, इतना ही बहुत है। कम पे राजी हैं किस चीज़ की, जन्नत के। कहते खैर है ज़रूरी कि 100 में से 100 ले। एक दफ़ा ऐसे किसी की बात मेरे कानों में पड़ रही है कि उन्होंने कहा अरे भाई कोई ज़रूरी है हर पर्चे में पास हो, पूरे नंबर ना ले, वो खुद भी टीचर थे, तो उन्होंने मिसाल क्या दी कि कोई बात नहीं अगर दीन इस्लाम की कोई एक बात ना भी की तो कोई बात नहीं, कोई 100 बटा 100 नंबर सारे थोड़ी लेते हैं। और बात हो रही थी नमाज की, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आपको पता है कि पेपर्स में कंपलसरी क्वेश्चन भी होता है, सारे दूसरे कर लें और कंपलसरी क्वेश्चन छोड़ दें आपके स्टूडेंट तो क्या, तो कहा फेल। तो मैंने कहा नमाज वो कंपलसरी क्वेश्चन है। लेकिन लोग आराम तलब होते हैं। मैंने जो फील किया ना, सबसे बड़ी रुकावट हमारी कामयाबी और आगे बढ़ने में हमारी आराम तलबी होती है। रूटीन नहीं छोड़ सकते। हाय अभी तो सेट हुए थे, अब उठना पड़ेगा। हाय अभी तो सारा कुछ मुतमईन हुआ है, सब सही किया। नहीं, मैं अपनी रूटीन नहीं छोड़ सकती। अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश से भागे हुए इश्तेहारी लोगों से मेरी अक्सर किसी ट्रेनिंग, सेमिनार या टीवी शो में मुलाकात हो ही जाती है। इन्हीं में से एक शख्स को जब मैंने झंझोड़ने की कोशिश की तो वो बड़ी बेएतनाई से बोला, बड़ी बेएतनाई से मेरा ये कि जस्ट लाइक केयरलेसली, बस जनाब मेरी तो ट्रेन छूट गई है। ये जुमला मैंने पहली बार नहीं सुना था। खुद आपके लिए भी ये अल्फाज नए नहीं होंगे। और वो क्या, मेरी ट्रेन छूट गई है। इसका मतलब क्या है, मैंने इन साहब से पूछा। मतलब साफ है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जब जिंदगी बनाने का वक्त था, मैं अपने बड़े भाई के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा, ना पढ़ सका ना कोई ढंग का काम सीखा। अगर काम सीखा भी तो भाई साहब की वजह से इसको पूरा वक्त ना दिया। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं, मुझे कोई काम करना नहीं। सच ये है कि मुझे काम करने की आदत कभी पड़ी ही नहीं, बस जिंदगी चलती रही, गुजारा होता रहा। यानी अब कोई गोल ही नहीं आगे बढ़ने का, क्या अब तो जिंदगी गुजर गई, अब और भी गुजर जाएगी। घर कैसे चलता है, मैंने फिक्रमंदी से पूछा। जवाब सुन लीजिए, बस अल्लाह चला रहा है, उन्होंने मासूमियों से जवाब दिया। आपको इस घिसी पिटी जिंदगी से छुटकारा, आप इस सबको बदलना नहीं चाहते, इनका सवाल है। अब कुछ नहीं हो सकता, छूट गई है, वो बजिद थे। ट्रेन छूट गई है तो फिर क्या, ये कोई दुनिया की आखिरी ट्रेन थोड़ी थी। देखिए, एक ट्रेन छूटती है तो हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट कब है। क्या आपकी कभी ट्रेन छूटी है? क्या हम सब कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी शोबे में अपनी ट्रेन छूट जाने के तजुर्बे से नहीं गुजरे? ट्रेन छूट जाना है क्या? ट्रेन छूट जाने से मेरी मुराद क्या है? अब ये मुराद लिख लीजिए। नंबर एक, मौके का हाथ से निकल जाना। आप सूरह बकरा से ज्वाइन नहीं कर सके, मौका निकल गया। क्या आल इमरान का मौका नहीं आ गया? आप सूरह बकरा पे अपनी दोस्तों को नहीं बुला सकी, शुरू में आपको खुद भी नहीं पता था ये कुरान क्या है, तो आप जोर लगा लीजिए। आप सूरह आल इमरान के शुरू में अपनी दोस्तों को बुलाइए, हाथ जोड़िए, प्यार से, मोहब्बत से, दर से हाथ पकड़ कर ले, कोई बात नहीं। फिर इसी तरह से पीछे रह जाना। बस जब हम पीछे रहते हैं ना, तो हम पीछे रह ही जाते हैं। आप कहीं नहीं, मैंने आगे आना है। इसी तरह हाथ आई दौलत का रूठ जाना, खुशहाली का लौट जाना, खुशकिस्मती का पलट जाना, तवक्कुआत का पूरा ना होना, उम्मीदों का टूट जाना, यकीनी कामयाबी का शिकस्त में बदल जाना, आरजुओं का दम तोड़ जाना। अब देखिए, इनमें से कुछ ना कुछ कभी ना कभी हमें से सबके साथ होता है। हमें पूरी उम्मीद होती है ये काम हो जाएगा, आखिरी लम्हे पे नहीं होता। और आप बिल्कुल मायूस होते हैं, कोई नहीं होना, तो हो जाता है ना। इसी तरह ट्रेन छूटने के क्या है कि सफर का रायगां चले जाना। आप कोई सोच लेकर गए घर से, मैं फलां चीज ले आऊं, घूम फिर के आगे वो चीज मिली नहीं, अब आप कहते हैं कि ये तो काम हुआ ही नहीं। मेरी ट्रेन छूट गई है का मतलब है, अगर आपके नजदीक ये मेरी ट्रेन छूट गई है का मतलब अगर आपके नजदीक भी ये है कि आप मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इन साहिब की तरह आपको भी मुस्तकबिल अंधेरी कोठरी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता होगा। क्या आप भी मायूसी की दलदल में फंस चुके हैं? ट्रेन छूटने की शिकायत करने वाले लोगों की नफ्सियात क्या कहती है? इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? इनकी खुद कलामियां क्या इरशाद फरमा रही होती हैं? ट्रेन छूट जाने के बाद इनके तासुरात क्या होते हैं? इनकी कभी न रोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयानात जारी किए जा रहे होते हैं? यानी जब कोई नाकाम हो जाता है, उसका मौका चला जाता है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये जुमले सुन लें, वो लोग चीख चीख के ये कह रहे होते हैं कि मैं ट्रेन छूटने का जिम्मेदार नहीं हूं। यही कहते हैं ना। शौहर कहेगा तुमने देर कराई, बीवी कहेगी तुमने देर कराई, वो कहेगा ट्रैफिक बहुत था, वो कहता है जी हड़ताल हो गई, 100 बातें। फिर मैं अपनी जिंदगी बदलने की मजीद कोशिश, हिम्मत टूट जाती है ना कामयाबी ना मिले तो। ज़िंदगी बनाने की कोशिश करना अहमकाना ख्याल है। बंदा कहता छोड़ो हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, अब अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करें। मायूसी मेरा मुकद्दर है, ये भी एक जुमला होता है। अब कोई कदम उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह कुछ कहते हैं, मुझे हक हासिल है कि कुछ ना करूं, बस क्योंकि मुझे कभी मिला ही कुछ नहीं। फिर इसी तरह कुछ कहते हैं, मेरी ज़िंदगी किसी और ने जी ली है, यानी ज़िंदगी मेरी है, जी कोई और है। कोई कहता है मेरी नाकामी का मलबा किसी और के सर पर है। कोई कहता है ज़माने ने मेरे खिलाफ साजिश की है। कोई कहता है मुझे प्लानिंग के तहत कामयाबी से दूर रखा गया। सुनते हैं कभी ऐसे जुमले? बहुत बहादुर लोग होते हैं जो अपनी नाकामी का जिम्मा खुद को ले। वो कहते हैं नहीं, इनकी आदत है, बस ये किसी को आगे जाने नहीं देते, अब इनसे कौन आगे निकले। इस तरह की बातें। मैं कसूरवार नहीं हूं। और सबसे बढ़ के मजे की बात पता है क्या है? कुछ लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ट्रेन ने खुद मेरे साथ ज्यादती की है। कैसे? वक्त पे आके। उसको नहीं पता मैं लेट आता हूं तो रुक जाता थोड़ी देर, है ना? ऐसी बातें। क्या मुसीबत है इस ट्रेन को हर वक्त वक्त पे आने की। हर बंदे को हम मुजरिम करार देते हैं सिवाय अपने। ट्रेन के छूट जाने का मतलब है कि अब मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं बचा। कोई रास्ता नहीं, कोई दर नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई इम्कान नहीं। मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, यहां से टस से मस नहीं होऊंगा। जो जिंदगी मैं जीना चाहता था अब तक जाने का कोई इम्कान नहीं। जो जिंदगी मैं जीना चाहता था इस तक जाने का अब कोई इम्कान नहीं। मैं यही ठीक हूं, मुझे ना छेड़ो। मैं सर उठा के जीने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मायूसी की अथाह गहराइयों में गिरे हुए, फंसे हुए, धसे हुए सख्त जान लोगों को कामयाबियों की बुलंदी पर ले जाना, इन्हें सर उठा के जीने की तरगीब, हौसला और तरबियत देना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। इसलिए मैं इनकी सारी वजाहतों और बहानों के बावजूद इनके अंदर के इस इंसान से रब जोड़ने की कोशिश में आखिरी हद तक जाता हूँ। जो कामयाबी चाहता है सर उठा के जीना चाहता है। इसीलिए अभी तक आपकी जुम्मे की छुट्टी अप्रूव नहीं हुई। आप सोचते हैं जुम्मे की छुट्टी मिल गई, बस आपके हस्बैंड्स ने आपको सर्टिफिकेट देना है, एक्सीलेंट वाइफ, बच्चों ने देना है एक्सीलेंट मॉम, और मुझे पता है कि उस एक छुट्टी ने आपको कितनी और आजमाइशों में डाल देना है। जो काम आप नहीं करने पड़ते थे वो भी कहने उन्होंने करो, तुम्हारी छुट्टी है। एक छुट्टी छोड़कर आप कितने कामों से छूट जाते हैं आपको पता है? लेकिन ये इंसान का ख्याल होता है, और मैं कभी हार नहीं मानती। ये पता नहीं मेरे अंदर क्या बात है, मतलब मैं हमेशा अपने से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ। क्यों? इसलिए कि जब आखिरी हद हो जाएगी फिर तो मान नहीं है अपने आप को। हमने एक दिन तो हम सब ने बिस्तरों पे लेटना ही है ना। हम सब कब तक भागेंगे? आप सोचिए जरा, कितने दिन की जिंदगी है हमारे पास, कितना वक्त है, और कितने लोगों में अल्लाह ने हमें चुना। और अगर फौजी छुट्टी मांग लें उस दिन जिस दिन दुश्मन आए, और छुट्टी मांग लें उस वक्त जब फ्लडिंग हो रही हो, जब जलजला आया हो, आप तो मुश्किल हालात के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको क्यों इतनी छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं? छोटी छोटी बातें होती हैं ये। सिर्फ आप खुश होके काम करें ना घर का, तो एक घंटे में कर लेंगे। जोश हो बस आपको उस दिन कोई, कि आज रात मैंने कुछ करना है, या मेहमान आ रहे हैं, या कोई भी आ रहा है, मेहमान मैके से आ रहे हैं, या जिस दिन वैसे ही आप बड़े खुश हैं उस दिन देखिए घर का काम। और आम दिनों में आप देखिए अपनी स्पीड तो देखें कदम उठाने की। मैं किसी को आप में से देख रही थी अबाया उतारते हुए तो मैंने पूरा उनको ऑब्जर्व किया, इतने प्रेम से प्रीत से उन्होंने कोट उतारा, स्लीके से हैंगर पे डाला, फिर अबाया कोट उतारा, फिर स्कार्फ उतारा। पर कम से कम 5 मिनट वो वार्डरोब में थी, तो मैं उनको देख रही थी ऑफिस से ना, तो मैं सोची थी इसी स्वीट से घर के भी तो काम करती होंगी ना, है? सोचने की बात है ना। गेट मोर फ्रॉम लाइफ। हम बार बार नहीं रहेंगे, यकीन करें हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त। क्यामत के दिन हमें हसरत आएगी कि लौल आखरतनी लाजलिन करीब, मौत के वक्त हसरत आएगी। हदीस में आता है कि जन्नती को जन्नत में किसी चीज का अफसोस नहीं होगा सिवाय उन लम्हों के जो अल्लाह की याद के बगैर गुजर गए। तो आप एक काम करके देखें खुद से, एक हफ्ता पूरा ले, आज से अगले वीक तक घर का काम जोश के साथ करें और घड़ी देख कर करें। आप अपने बच्चों के अपने एक घंटे में सारा घर साफ करना है, फिर आप उनकी दौड़ें तो देखें। हमारे अंदर जोश नहीं होता, हम सोच फ्रिज भी ऐसे खोलते हैं क्या पकाऊं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऊपर कोई वीडियो बन रही हो हमारी और कोई कैमरा खो चल रहा, इसको क्या करूं, इधर देख, इसको रखा नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमारे काम करने के अंदाज में बड़ी नज़ाकत है। मैं गलत कह रही हूँ? जी बताइए। हम बहुत वक्त सही इस्तेमाल नहीं करना आता, मुझे तो ऐसे लगता है अपने बारे में। आपको तो, आप तो सारे मेरे से सुगड़ है, ये तो मुझे भी यकीन है। आप कहेंगे आपने ना कभी किया ना आपको करना आता है, सीधी सी बात है, राइट? आपको क्या पता घर की मसरूफियत क्या होती है, ये सोच रहे हैं ना आप सब? नहीं सोच रहे? आपको सोच दी ताहिरा, तुझे ही सोच रही है, है? जब वह मिल जाता है ऐसे ही है। मैं सोचती हूँ कि जो लोग काम कर रहे होते हैं ना भाग दौड़ के, मुझे उन पर रश्क आता है। मेरा कहता है पीछे हो जाए, मैं करूँ। जो मज़ा जोश में काम करने का होता है वो बैठ के कुर्सी मेज पे खाने का थोड़ी होता है। सिर्फ आप अपने अंदर एक जोश लाएं, जिंदगी ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। और आप देखिएगा जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, जो यंग मदर्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। कनाक साफ किया, एक गला सही किया, एक को खाना मुंह में डाला, एक के कपड़े बदले, ये किया, वो ठीक रहती हैं। आप अपनी अपनी माँ को देखें, चले आप सब अपनी माँ का सोचें। आप इस वक्त जो उनकी उम्र है, किस किस की माँ को मैं जानती हूँ, आपके मी तो इधर ही हैं, ये अभी इसलिए एक्टिव हैं कि इनके छोटे बच्चे हैं। सच्ची बात है, आप सदफ अपनी अम्मी का सोचें। आप सोच देखें अपनी अम्मी को इस एज में, और आज से 20 पहले का भी, 20 साल पहले भी याद हो, आपकी अम्मी में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? सोच के सब पड़े ना वक्त पर, कदम उठाना उठना, काम अब भी करती हैं लेकिन आप गुस्सा ज्यादा करती होंगी। ताहिर आपकी अम्मी में फर्क पड़ा पिछले 20 साल में? जी आप सबके पड़ा, बाजी आपकी पड़ा अम्मी में, भला ही ये हमारे भी पढ़ना है। और जितनी पहली माएँ एक्टिव और एक्सपर्ट थी, आज की माएँ तो वैसी है ही नहीं है। पहली माए बर्तन धोती, कपड़े धोती, कूटती, पता नहीं क्या कुछ करती, खटियां चक्कियां भी काटती और उनके बच्चे भी पल जाते थे। और वो इतनी एक्टिव जिंदगी गुजारने के बाद अब जरा सी ढीली हुई है, तो हम अपना सोचे, जरा सदफ आप अपने आप को 20 साल आगे ले जाएं, जहन में कैसा आता है आपका तस्वर? सच्ची बताएं, आप सच बोलेंगी मुझे पता है। ये खुद ही डर गई है, और मुझे तो इनके हस्बैंड पे रहम आने लग गया अभी से। उन्होंने इंशाल्लाह 20 साल बाद भी एक्टिव ही होना है, और इन्हें क्या हाल होना है जी। जी पिछले भी जब मैं इधर ही थी अभी जाने से, तो पता नहीं ऐसे शायद कभी सोते में बल पड़ता है तो घुटना जो है ना उसके ऊपर, मुझे मैं उठती थी जब या बैठती थी तो मेरा ख्याल है वो कोई बल था। यकीन करें मैं उससे इतना डर गई खुद से, मैंने आप में से किसी से जिक्र भी नहीं किया, आज ही किया। तो मुझे खौफ में मेरी नानी आ गई जो आखिर में टेढ़ी चलती थी घुटना, वो मेरे मामू का एक बच्चा है, तो वो उसका एनालिसिस बड़ा अच्छा था कि दादा अबू बूढ़े हो गए, दादी अम्मा टेढ़ी हो गई है। तो वो अक्सर जो अक्सर हमारी औरतें होती हैं वो टेढ़ी ही हो जाती हैं ना। तो मुझे ना, मैं अपने लाशौर में महसूस किया, क्या मतलब है ये, मुझे घुटनों के दर्द हो रही है? नहीं अभी थोड़ी होनी है। यकीन करें ना मैंने कोई दवाई लगाई, लेकिन मैंने ना उस दौर मैंने ना फिर पहले मैं अगर अब जैसे यहां से उठूंगी तो सोच के उठूंगी राम, तो मैंने जल्दी से उठना शुरू किया अपने इस जोश में कि नहीं नहीं मुझे कोई घुटनों की दर्द नहीं होनी। तो वो पता नहीं खुद ही कहीं चली गई है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्क पड़ता है। और आप अपने साथियों में देखें जो भाग के काम करते हैं वो ज्यादा काम करते हैं, और जो सोचते रह जाते हैं हम जैसे वो कुछ भी नहीं करते। तो आप खुद देखें कि आपने कौन, आपकी स्पीड क्या, आपके। और मुझे याद है कि एक सिस्टर, तो वो जब उठती थी ना तो घुटने पे हाथ रख के उठती थी, जवानी में आम जैसे आदत होती है। तो उनके भाई उनके पास खड़ते, उन्होंने कहा कि देखो जब तुम बूढ़ी ना बहुत, नहीं तुम बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाओगी, बगैर घुटने पे हाथ रख के उठा करो। तो ये बड़ों की बातें होती थी अपने वक्त में। तो कभी मत सोचिए कि मैंने कुछ करना नहीं है, आप अपने आप को एक्टिव कर लें, थोड़ी स्पीड तेज कर लें। आपने कई मशीनों में देखा होगा अगर इतनी स्पीड होगी तो एक घंटे में कपड़े धुल जाएंगे, इससे ज्यादा कर देंगे आधे में धुल जाएंगे। आप अपनी स्पीड तेज कर लें। ये क्यों ख्याल आता है हमारा कि हम जो कर रहे हैं उसको कम कर दें? आज आप एक गोल लें अपने लिए, इस पूरे वीक में अपने काम करने की स्पीड को बढ़ाएं। और दूसरा ये कि जरा फालतू कामों को अलग भी तो करें। मेरा ले आप 3-4 सालन तो बना के खिलाती होंगी रोज घर वालों को, चटनी सालन रोटी चावल, कपड़े इस्त्रियां कर करके देते हैं घर वालों को, हैं गुजारा करते हैं, तो गुजारा करके चले जाएं इस दुनिया से। यकीन करें ये दुनिया है ही गुजारे की। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। मेरी ट्रेन छूट गई है, कई इश्तेहार लगाए फिरने वाले, कामयाबी से मफरूर इश्तेहारी लोगों से कोई पूछे कि ट्रेन छूटने का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने से इन्हें आज तक कोई फ़ायदा हुआ? आपसे इल्ज़ाम घर के छोटे बच्चे को दे दें। अक्सर औरतें सबसे छोटे बच्चे का नाम ले लेती हैं, ये बड़े काम बिगाड़ता है, मैं ठीक करती हूँ ये खराब करता है। अब सदा फंसी है, इसका ख्याल है किचन की हर चीज इसहाक ने खराब की हुई है। ऐसे ही है ना, तो जब इसहाक नहीं था तो हम तो आपको ऐसे ही देखते थे तब। ये बड़ा मसला है ना, जिनको हम जानते होते हैं वो हमसे डरते नहीं है। आप सोचिए ना जरा कैसे, और कैसे लोग हैं दुबले पतले मैंने देखे हैं, ऐसे तिनके में जान है, वो बच्चों के साथ भी भागते हैं, बच्चों के बगैर भी भागते थे। हाँ, तो कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं कि ट्रेन छूट गई, वो इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, फायदा क्या हुआ? बिल्कुल नहीं। वो यक जुबान होकर कहेंगे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। ट्रेन छूट जाने के इल्ज़ाम की जद में कोई भी आए, कामयाबी और खुशहाली की बारिश की जद में इल्ज़ाम तराश कभी नहीं आएगा। क्या ट्रेन छूट जाने के बाद झगड़े में उलझे हुए, मुंह पर अपने गुस्से की भड़ास निकालते हुए आग बगोला लोगों को आपने देखा है? कई बार ये लोग इतनी देर तक इतने हमाक से गुस्सा फरोशी और इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि इन्हें यह एहसास नहीं रहता कि साथ वाले प्लेटफॉर्म पर एक और गाड़ी आके रुक के इन्हीं की तरह के गाड़ी छूट जाने के बाद जरा संभलने वालों को अपने साथ ले जा चुकी होती है। क्या समझ आई? कि ट्रेन तो अभी छुटी थी, आप शिकवे कर रहे हैं, आपके साथ जिनकी छुट्टी थी वो उससे अगली ट्रेन लेके जा चुके हैं और आप खड़े शिकवे कर रहे हैं। क्या पता चला कि नाकामियों का शिकवा करना या दूसरों के कंधे पे तलवार रखने की बजाय आप मौका देखिए कि अगली ट्रेन कब आएगी और आप इंशाल्लाह उसको ना छोड़ें, ये अगली खैर की बात होगी। सॉरी, गाड़ी ना कभी छुट्टी होगी, लेकिन क्या गाड़ी छूट जाएगी तो जीना छोड़ देंगे? ये खुद से पूछिए। आगे बढ़ना छोड़ देंगे, अपने ख्वाबों का ताकुब छोड़ देंगे, अपने प्यारों को कमतर जिंदगी के आसरे छोड़ देंगे, सर उठा के जीना छोड़ देंगे? गाड़ी छूट जाए तो क्या वाकई कुछ नहीं बचता? क्या जिंदगी को खैर बात कह देना दुरुस्त फैसला होगा, यानी नाकामी की वजह से अब अपनी जान ही ले लेना? क्या ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाना सही लाहे अमल होगा? क्या सर झुका के जीते रहना आपके लिए जायज हो जाएगा? बहानेबाज और इल्जाम तराश लोगों के लिए सब जायज है, वो अपने बहानों के दिफा में आज तक लड़ते रहेंगे, वो ट्रेन छूट जाने का सोग उम्र भर मनाते रहेंगे, ताहम अगर वो सोग से फारग हो जाएं, तो ट्रेन छूट जाने के बाद भी इम्कानात के खुलते हुए दरवाजों को अपना मुंतजर पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है और कोई चांस आखिरी चांस नहीं होता। ट्रेन छूट जाने के सोग को उम्र भर का रोग मत बनाइए, इसको लिख लें। ट्रेन छूट जाने के सोग को उम्र भर का रोग मत बनाइए, सोग से निकलिए, जल्दी निकलिए, अभी निकलिए, अजम के साथ निकलिए, उम्मीद के साथ निकलिए। मुझे पता है कि ट्रेन छूट जाने का दुख क्या होता है, मुझे पता है कि दीवार के साथ लग जाना किसे कहते हैं, मुझे पता है कि मायूसी के अंधेरों से निकलकर खुद को एक और कोशिश गोया एक और नाकामी के लिए तैयार करना कितना कठिन होता है। मैं हर बार अपनी ट्रेन छूट जाने के बाद इल्ज़ाम तराश बनता रहा, यानी दूसरों पर इल्ज़ाम देता रहा, फ़ायदा कुछ ना हुआ। खुशहाली की ट्रेन, कामयाबी की ट्रेन, सेहत और तंदरुस्ती की ट्रेन, उम्मीदों की ट्रेन, अल्लाह से राब्ते की ट्रेन, रिश्तों की ट्रेन, दोस्ती की ट्रेन, मोहब्बत की ट्रेन, मैंने इनमें से हर ट्रेन के छूट जाने का दुख दिया है। यानी हर एक इंसान की ज़िंदगी की मुख्तलिफ ट्रेनें होती हैं, کسی کی صحت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے، کوئی کامیابیوں سے دور ہے، کسی کے رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہیں، کسی کی محبتیں اس سے روٹھی ہوئی دکھتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو پھر میں اس کے باوجود آج یہاں کیسے پہنچ گیا؟ صرف اس سوچ کے خلاف بغاوت سے کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں نے اور آپ نے اپنے اندر سے جس سوچ کو نکالنا ہے نا، وہ یہ، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹرین چھوٹنے کے بعد الزام تراشی کی بجائے جب میں نے پہلی بار خود سے پوچھا کہ اور کیا ہو سکتا ہے، تو میری زندگی بدل گئی۔ میں الزام تراش سے موقع تراش بن گیا۔ یہ لکھیے، الزام تراشی کی بجائے موقع تراشی کیجئے، موقع بنائیے، خود نہ کاٹنا، یعنی خود موقع بنا لیجئے۔ مجھے موقع شناس بننے کے گر بھی آ گئے۔ میں بہانے بازی سے ذمہ داری کے سفر پہ نکل کھڑا ہوا۔ خوابوں کی قربانی کی بجائے خوابوں کی خاطر قربانی کی راہ اختیار کی۔ یعنی خواب نہیں قربان کرنے، بلکہ خوابوں کی خاطر قربانی کرنی ہے۔ رستے خود بخود کھل گئے اور پھر کھلتے ہی چلے گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی ٹرین چھوٹ جائے تو اس کے بعد وہ کیا کرے؟ گاڑی چھوٹ جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی چھوٹ گئی ہے تو رونے دھونے کی بجائے پہلی بات اس گاڑی کا پیچھا کریں۔ گاڑی کا تعاقب گویا کہ خوابوں کا تعاقب ہے، اچھی زندگی کا تعاقب ہے، پھر پیچھے ہٹنے کا، رک جانے کا، مڑ آنے کا اور بھاگ جانے کا امکان بیچ میں کہاں سے گیا؟ بیچ میں آ کہاں سے گیا؟ اگلی گاڑی کے آنے کا انتظار کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ گاڑی ہی تو چھوٹی ہے، منزل تو نہیں روٹھی، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ منزل تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، ایک گاڑی نہیں ملی اگلی لے لیں۔ بیچاری گاڑی کو اتنی اہمیت ہی کیوں دے رہے ہیں؟ گاڑی کی بجائے نظریں ہدف پہ، منزل پہ اور خوابوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ گاڑی چھوٹ گئی ہے کا مطلب منزل منہ موڑ گئی ہے تو نہیں، یعنی منزل تو موجود ہے۔ اگلی گاڑی کے انتظار کا کیا مطلب ہے؟ غلطی، کوتاہی یا پہلی گاڑی چھوٹ جانے کی وجوہات کو نہ دہرانے کا عہد کرنا۔ یعنی دوبارہ بولتی ہوں، کیا مطلب ہے اگلی گاڑی کا انتظار کرنا؟ غلطیوں، کوتاہیوں اور پہلی گاڑی کی چھوٹنے کی وجوہات کو نہ دہرانے کا عہد کرنا۔ یعنی اپنی عادتیں بدل لیجئے۔ گاڑی چھوٹی کیوں؟ لیٹ نکلے تھے، جلدی نکلیے، سست ہے، چست ہو جائیں۔ انتظار میں رہنے کا مطلب دراصل تیار رہنا ہے۔ خالی انتظار سے اگلی گاڑی کا ٹکٹ تھوڑی مل جائے گا۔ آپ کو انتظار سو کے نہیں کرنا، گپ شپ لگا کے نہیں کرنا، پلیٹ فارم یا سٹاپ چھوڑ کے نہیں کرنا، خود کو تیار کرنا اور تیار رکھنا ہی اگلی گاڑی پکڑنے کی ضمانت ہے۔ ورنہ کیا پتا آپ تیار نہ ہوں اور یہ ٹرین بھی چھوٹ جائے۔ کتنی بار آپ نے ٹرین چھوٹ جانے کے بعد بس ٹرین کا رخ کیا ہے؟ یعنی ٹرین نہیں ملی تو بس لے لیجئے۔ موقع تراش لوگ ٹرین چھوٹ جانے کے بعد بس پکڑ کے اگلے اسٹیشن پہ دوبارہ ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں۔ کئی بار تو ٹرین کے اگلے اسٹیشن پر آنے سے پہلے ہی وہاں انتظار فرما رہے ہوتے ہیں۔ بس چھوٹی ہے تو ٹرین پکڑ لیں گے، ٹرین چھوٹی ہے تو بس پکڑ لیں گے۔ ایک سواری پر زیادہ بھروسہ مت کریں، کوئی بھی سواری پکڑ لیں۔ گاڑی چھوٹ گئی تو کسی سے لے لیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ منزل پہ پہنچنا آپ کے لیے جتنا ضروری ہوگا، امکانات کے اتنے ہی در آپ پر آپ ہی آپ کھلتے جائیں گے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے منزل پہ پہنچنے کا ایسا پکا ارادہ کیا کہ بسوں ٹرینوں کی ہڑتال کے باوجود وہ کسی ٹرک، ٹرالے، کنٹینر، ٹریکٹر، ٹرالی، بیل گاڑی، چنگچی یا سائیکل پر بیٹھ کر اپنی من پسند جگہ پر پہنچ گیا؟ کیا آپ نے خود کبھی ایسا کر کے نہیں دکھایا؟ یعنی جن کو پہنچنا ہوتا ہے آلٹرنیٹ لے لیتے ہیں۔ منزل پر پہنچنے کا عزم جتنا مضبوط ہوگا، میری گاڑی چھوٹ گئی ہے کی شکایت اتنی کمزور ہوگی۔ اب آخری لفظ ہیں کیا کہ خوابوں کی پکار پر لبائی کہنے والے تو گاڑیوں بسوں کا انتظار ہی نہیں کرتے، وہ تو بس نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے پیدل حج کرنے والوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا؟ انہیں کون سی چیز کھینچ لاتی ہے؟ آبلا پائی یعنی پاؤں میں آبلے چھالے پڑے ہوتے ہیں، آبلا پائی کے باوجود لوگ اپنے ہدف کی طرف کیسے بڑھتے رہتے ہیں؟ اس کی اس سے بہتر مثال کہاں ملے گی؟ کیا آپ نے خود کبھی شکایت بازی کی بجائے پیدل مارچ نہیں کیا؟ کھڑے رہنے کی نسبت چلتے رہنا کہیں بہتر ہے، چلنے والوں کے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ گاڑی چھوٹ جانے پہ رونے کی بجائے آپ مخالف سمت میں آنے والی گاڑی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اپنے کالج سے فاروق آباد جانے کے لیے ہمیں کبھی میں یا چھت پہ بھی سیٹ نہیں ملتی تھی، ہم فاروق آباد کی بجائے شیخوپورہ جانے والی بس میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ جاتے جہاں سے فاروق آباد جانے والی ویگنیں بسیں چلتی تھیں۔ 10 میں سے 9 دفعہ ہمیں چھت پہ تو ضرور سیٹ مل ہی جاتی تھی۔ کئی بار منزل پہ پہنچنے کے لیے ایک آدھ قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کا بس پائی نہیں ہونا چاہیے۔ 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر لمبی چھلانگ لگانے کا منظر کس نہیں دیکھا؟ وقتی طرف انسان تھوڑا سا پیچھے بھی ہوتا ہے نا تو ایک نئی طاقت کے ساتھ آگے آتا ہے۔ گاڑی چھوٹ گئی ہے، کوئی راستہ نہیں نکل رہا تو گاڑی خود بنا لیں، اپنی گاڑی خود بنا لیں، اپنی سمت بدل لیں، منزل بدل لیں، ہدف بدل لیں، راستہ بدل لیں، لائحہ عمل یعنی طریقہ کار بدل لیں، بس ایک چیز نہ بدلیں۔ آپ بتائیں وہ کیا؟ سر اٹھا کے جینے کا عزم نہ بدلیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ جب تک آپ کے اندر سر اٹھا کے جینے کا عزم ہے، آرزو زندہ ہے، جذبہ ہے، آپ باہمت ہیں، آپ مخلص ہیں، جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، تو کسے خبر کہ منزل خود چل کے آپ کے پاؤں پڑ جائے، راستے خود بخود آپ کے قدموں تلے بچھتے چلے جائیں۔ کس کے بسوں، ٹرینوں، گدا گاڑیوں، چنگچی رکشوں اور آبلا پاؤں سے قطع نظر منزل کی طرف رواندواں رہنے والوں پر کب ہوائی جہازوں کے بزنس کلاس کے دروازے کھل جائیں؟ دنوں میں طے ہونے والی مسافتیں منٹوں میں طے ہو جائیں۔ ایک سے دوسرے سٹاپ تک جانے سے گھبرانے والے دنیا بھر کی سیروں کے مزے لوٹیں۔ دنیا کے بہترین ہوائی جہاز اور ان کی بہترین سیٹیں، پائلٹ اور سٹاف ان کا استقبال کریں۔ بہترین ہوٹلوں کے ایگزیکٹو فلور کے عالیشان ان کی آرام گاہ بنیں۔ دنیا کے بہترین بیچ، ریزورٹس، آئی لینڈ اور سیر گاہیں ان کے لیے چشم برا ہوں، اور کب خوابوں میں بسنے والی زندگی ان کے لیے حقیقت کا روپ دھارے سامنے آن کڑی ہو۔ سچ ہے نا، کبھی لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ ان کو وہ بھی دے دیتا ہے۔ آپ تو چھوٹی چیز سوچتے ہیں، اللہ تو بہت بڑی دے دیتا ہے۔ دنیا کے بہر ان کے پکنک اسپاٹ، جزیرے، سیر گاہیں، وادیاں، ساحل، پہاڑ، جنگل، میوزیم، سڑکیں، تاریخی مقامات، پلازے، عمارتیں، ریسٹورانٹ، جھیلیں، آبشاریں، دریا اور پرفضا مقامات دیکھنے کی آپ کی آرزو بھی میری طرح پوری ہو سکتی ہے۔ بس اتنا کیجئے، کبھی گاڑی چھوٹ جانے کی شکایت نہ کیجئے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ کبھی آپ کی گاڑی نہیں چھوٹے گی، ہاں اس بات کی گارنٹی ہے کہ گاڑی چھوٹنے کے بعد بھی امکانات کی ایک پوری دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ لیکن آپ وہیں کھڑے مت رہیے، آگے بڑھیے، حد و حساب امکانات سے، اسباب کے ذریعے دوستی کیجئے، الزام تراشی کی بجائے موقع تراشی کا فن سیکھیے، انتظار کی بجائے خود کو تیار کیجئے۔ یاد رکھیے، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے آپ کے سر اٹھا کے جینے کا۔ ان لوگوں کے انتظار کو طویل مت کیجئے۔ آپ کے سر اٹھا کے جینے سے کتنے لوگوں کا سر اٹھ جائے گا، کچھ کا فخر سے اور بہت سوں کا ان ثمرات کی وجہ سے جو آپ کے باعث ان تک پہنچیں گے۔ پھر گرا دیجئے بے سود بہانوں کی دیواریں اور نکل کھڑے ہوئیے، اپنے خوابوں کی جستجو میں رہیے۔ رکھ دیجئے آج پہلا قدم سر اٹھا کے جینے کی راہ پہ۔ تہیا کر لیجئے کہ نہ صرف آپ نے دنیا کو سر اٹھا کے جینا دکھانا ہے، سر اٹھا کے جی کے دکھانا ہے، بلکہ دنیا کو سر اٹھا کے جینا بھی سکھانا ہے۔ دنیا آپ کی منتظر ہے، تو پھر بتا دیجئے دنیا کو کہ سر اٹھا کے کیسے جیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا، کیا فائدہ ہوا آپ کو آج کی بات سننے کا؟ کوئی پریکٹیکل چیز، کوئی سوچ، ہاتھ کھڑا کر لیں۔ जी शाबाश सदब। थोड़ा सा इंशाल्लाह। अच्छा था आपने सोचा, अपनी स्पीड बढ़ानी है आपने। जी बाजी आपने क्या सीखा?
इंशाल्लाह स्पीड तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है, इसको मैंने बरकरार रखना है और बेहतर बनाना है इंशाल्लाह। और साथ साथ मैंने खुद तो सीखा रहना ही है, या अपने आप को अजम के साथ अपनी राह पे रखना है, साथ दूसरों के लिए मैंने मदद करनी है इंशाल्लाह।
दूसरों को भी करना इंशाल्लाह। जी साइमा जी
उस्ताद जी मैंने ये सीखा कि अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, क्या पता कोई एक स्किल ऐसी है जो मेरी काफी के रास्ते में रुकावट बन रही है।
देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत बचपन कह लें यानी अर्ली लड़ ना, तो मुझे खाना पकाने का बड़ा शौक था, चुपके चुपके भी पकाना, और डर भी होता था कि मार पड़े फिर भी करना ना। तो मुझे याद है कि हमारी एक कॉमन फ्रेंड कह लें अम्मी, यानी दूर की कोई फ्रेंड थी, तो टीचिंग करती थी वो, बड़ी तेज़ मतलब एक्टिव औरत थी वो। तो वो पूरा हफ्ता जॉब करती थी, फिर एक ऐसा मौका हुआ कि किसी जगह हम सारे गए तो हमें उनके साथ रहने का मौका मिला ना। तो हमने क्या देखा कि वो कामों को कैसे मैनेज करती हैं। पाकिस्तान में लोग अमूमन मसाला भूनते हैं ना, प्याज का टमाटर काटते हैं, फिर मसाला भून के फिर सब्जी डालते हैं या गोश्त डालते हैं ना, यही तरीका होता है। मेरे अभी भी लाशौर में कि वो हफ्ते में एक दिन क्या करती थी, खूब 2 किलो प्याज टमाटर थूम प्याज जो करके ना सारे हफ्ते की हंडियाओं का मसाला इकट्ठा गला लेती थी। अच्छा अब क्या हुआ कि वो असल तो काम यही होता है ना, प्याज कर फैलता तो सारा कुछ उसी में। अब वो क्या करती थी कि पूरे हफ्ते का वो मसाला इकट्ठा बना करना, तो उसको फिर इस तरह मैनेज करती थी कि हर दिन सिर्फ उनको वो पका हुआ मसाला डालना, थोड़ा घी डालना, और जो सब्जी या चीज़ डाल के ना उसको आके वो दम पे डालती थी, उतनी देर में रोटी बनाती थी, उसका खाना पकता था। मैंने देखा कि अब ये वैसे तो होते ना फ्रेश खाना पकाना, और ये फ्रेश ही बनता है ना, उस दौर में नमक प्याज इस तरह का नहीं इतना होता होगा, लेकिन कामों को मैनेज करें। आप खुद देखें कि क्या चीज़ मेरा वक्त ज़्यादा लेती है, आप उसको इकट्ठा कर लें। मियाँ को खाना गर्म चाहिए, खाना गर्म आप दे सकते हैं, और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि हम ढीले रहें तो हम घर रह के भी वक्त पे नहीं बना सकते। तो ये चीज़ आप करके देखें, स्किल्स में कई चीज़ें इससे लोगों की इस चीज़ों से इंसान सीखता है। जी आप जी
रहते थे और मैं जॉब भी करती थी और यहाँ पे भी हम लोग आते जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी तरह करते थे कि जब ज्यादा खास तौर पे अभी पता हो ना कि नेक्स्ट वीक किसी मेहमान ने आना है या इन दिनों में आ रही है कुछ मेहमान वगैरह, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह करती थी। 5-6 हांडियों का बड़ा सा एक दिन में, एक तो स्मेल खत्म होती है, दूसरा बस दाल है तो दाल में भी वही चीज जानी,
वही चीज
वही जानी है बस।
और वो मुझे याद है गोश्त भी अलग से उबाल लेती थी, यानी गोश्त भी उबला पड़ा है, मसाला भी बना पड़ा है, गोश्त पकाना है, मसाला गोश्त कट्ठा डाल के, और फिर वो फ्रेश अंडी पकने का टेस्ट आता था,
सबको लगता था कि हमने पकाई,
अभी पकाई है। फिर मुझे उनकी एक और बात याद आ रही है कि रोटी पकाती थी तो बड़ा सा तवा था, तो वो इतनी फायद शुआरी कह लें या आप उसको क्या सरफा कहें कि वो रोटी पहली उतारने से पहले दूसरी हाथ में इस तरह रखती थी कि इधर इसको उतारा तो वो डाल के, तो फिर उस रोटी को चंगेर में रखती थी, कहती गैस ज्यादा जाया होती है। यदि किफायत शुआर भी इतनी थी कि गैस का बिल भी ज्यादा ना है। तो ये लोगों में स्किल्स होती है ना। जी आपने क्या सीखा मुमताज जी? किसको? ठीक है, मियाँ को तो नहीं कोई इल्जाम देना। ठीक चलिए ठीक है जी, इधर से आगे और कोई खुद से भी बताएं या सभी बताते हैं बारी बारी। जी माइक की तरह आपको देते हैं मौका। जी
बार बच्चों को साथ लगा के तो क्विकली जैसे बंदा गेम में ही इस तरह काम सारे घर का निपटाने की कोशिश करती रहूंगी।
इंशाल्लाह बच्चों को साथ लगाएं, वो वैसे ही नहीं, और साथ होंगे ना तो गंद भी नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको पता हमने कितनी मेहनत से गंद सफाई डाल की है। जी आप हजरत जी,
गलतियों को नहीं दोहराना,
शाबाश, पिछली गलतियों को नहीं दोहराना और आगे से नई गलतियां करनी है। जी आप जो कह रहे हैं आपके लोग साथ भी नहीं दे रहे आपका। पहले आप हमेशा वक्त पे आते थे, आप लोगों ने खुद ही बिगाड़ी है अपनी मेरी आते। آج آپ کو میں نے جب آتے دیکھا تو میرے دل میں خوک اٹھی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنا آسان کرے. جی ارم جی کو دیجیے, ان کو دیجیے, آگے ارم کو دیں. جی
یہی کہ گاڑیا جو چھوٹ بھی گئی ہے تو مایوس نہیں ہونا, کیونکہ منزل تو ابھی باقی ہے.
بے شک, گڈ. جی
ہاں جی, میں نے یہ سیکھا کہ کامیابی جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے اور کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے.
بالکل صحیح. جی فائزہ, او سوری فرح. جمعے کے بارے میں کیا سوچا؟ اب تو میرے لیے آپ کو جمعے کی چھٹی مانگتے ہوئے شرم آئے گی, ہے نا؟ آ رہی ہے؟ کتنوں کو آ رہی ہے؟ زنیرا چلی گئی ہے پیچھے. جی آپ. اسپیڈ کو تیز. بعض لوگ ہیں وہ تو جمعے کے جمعے ہی عبادت کرتے ہیں کہ جمعے کا دن بڑی عبادت کا ہوتا ہے, ہیں؟ تو آپ لوگ جمعے کی چھٹی کیسے لے؟ جی نیکسٹ. صحیح, شکایتیں نہیں کرنے, شکوے نہیں کرنے. جی ان کو دیجیے. انشاء اللہ. گیٹ مور فرام دا لائف.
ہمیشہ اپنے خوابوں کی پکار پہ لگا کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سور سے چننا.
جی خواب جو دیکھے ہوئے ان کی پھر قیمت بھی تو چکانی ہے نا انشاء اللہ.
یہی بات کہ قیمت چکانے وقت چکاتے وقت
بس کام کرنا ہے, حال نہیں پوچھنا اپنا انشاءاللہ. جی آپ نے.
جی سنہری موقع ملا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا اور اس پر قائم رہنا ہے, گامزن رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. قرآن کی تعلیم ہے اس کو حاصل کرتے رہنا
انشاءاللہ.
یہی ہے کہ اپنی ہمت نہیں ہارنی, تھک کے بیٹھ نہیں جانا, منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرو
انشاءاللہ. ماشاء اللہ, پھر تو آپ نے کامیابی کا نسخہ ڈھونڈ لیا ہے. جی نوشین آپ نے کیا سیکھا؟
میں تو سنتے ہوئے بالکل ڈر رہی تھی کہ جب بھی سنتے ہیں نا کامیابی تو ایسے آتا ہے کہ خوبصورت راستہ, تو پھر میں دیکھ رہی تھی کہ کامیابی کا راستہ خوبصورت راستہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر چلنے والے لوگ بھی پھر خوبصورت ہی ہوں گے. اور میں یہ ٹیلی کہہ رہی تھی کہ ایک دن صراط المستقیم کی صراط المستقیم بھی کامیابی مفلحون کامیابی کا ہی راستہ ہے نا, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس راستے پہ چلیں. یہ ٹپس سے انشاءاللہ ساری جو آپ لوگوں نے شیئر کیا وہ بھی اپنے لیے لی ہے.
بالکل, آپ دیکھیے کہ ہم جیسے جو کامیاب ہوتے ہیں, میں تو جب لفظ کامیاب بولتی ہوں پتہ نہیں کیوں میرے وہ لاشعور میں چپکا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور. وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں, وہ کامیاب تھے تو ہم کیوں نہیں, کہ جن کا ذکر اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا اور جن کے لیے اتنی خوشخبری ہیں قرآن کی, اتنی آیتیں ابراہیم کے لیے. سوچئے ذرا ان کی زندگیاں, ان کے ریسورسز, ان کے پاس کیا تھا, اور آج ہم اور آپ نیم سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں. تو آج کے بعد کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا اپنے حالات کا, اپنی مجبوریوں کا. مجبور لوگ پتہ نہیں اللہ کو کیسے لگتے ہوں گے, مجھے تو نہیں اچھے لگتے. لوگ سوچتے ہیں مجبوروں پہ ترس آتا ہے, مجھے غصہ آتا ہے پتہ نہیں کیوں. اسٹرانگ بنے, آپ ایسے بنے کہ لوگوں کو آپ کو دیکھ کر لگے کہ واہ یہ کامیاب لوگ ہیں. دبے پسے جبے لوگ تو غلام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر عاجزی بھی ڈالے اور ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی سے کچھ ایسا بڑا کام کروا کر جائیں کہ بعد میں لوگ ہمیں دعائیں دیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آن لائن سے بھی جو ساتھی لکھ رہے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے کمنٹس پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. چلیے جزاک اللہ خیر. آپ لوگ اپنی اپنی کلاسز میں, نماز تو ہو گئی ہوئی نا ظہر کی, عصر کا بھی وقت نہیں ہوا, وہ بعد میں ہوگی. جی